पहुंचन। जीवन की इस यात्रा में कभी भी निराशा ना आए। माया से युद्ध है, कभी भी निराशा ना आए। किस धारणा की आवश्यकता है, कौन सी धारणा होनी चाहिए? निराशा ना आए जीवन में कभी, क्योंकि माया से युद्ध है। किस धारणा की जरूरत है, जो हमारे इस जीवन में इस यात्रा पर बहुत जरूरी धारणा है? और धारणा बताओ। एक बहुत अच्छी चीज जिस पर हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए वो है हिम्मत। हिम्मत सदा ही बनी रहे। जब माया से हमारा युद्ध हो रहा है तो माया की हमें पूरी पहचान भी हो। अनेक बार इस युद्ध में माया की पूरी पहचान नहीं रहती, वो किस तरह वार कर रही है, कौन कौन से उसके सूक्ष्म रूप हैं, दांव हैं, ये पता नहीं चलता और बार बार हार होती है। या जीवन में कर्म क्षेत्र पर संबंधों में हार रहती है, टकराव होता है, तो जीवन में बहुत निराशा आती है। आज संसार में अगर हम देखें तो अधिकतर लोगों का मन निराशा से भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? बात निराशा बहुत है, आशाएं कम। हिम्मत इस सब में हमें बहुत मदद करती है। स्वयं को स्वयं मदद करने का तरीका है हिम्मत। और जहां स्वयं में हिम्मत है वहां सारा संसार भी मददगार बन जाता है और स्वयं बाबा भी। बाबा की मदद अगर हमें चाहिए तो हिम्मत रखें। बाबा से हमें भक्तों की तरह मदद मांगनी तो नहीं होती, वो तो हमारा पूरा हो गया पाठ। या मांगते हैं मदद अभी भी कि हे बाबा ये मुसीबत आ गई, आप मदद करो, आप तो सर्वशक्तिवान हो। मांगते हैं मदद, मांगते हैं या नहीं? वो आप ही भी देता है। और अगर हमें उससे मदद मांगनी है तो भिखारी बनकर नहीं, अधिकारी बनकर। अधिकारी बनकर भी मांगा जा सकता है, उस मांग में अधिकार की भावना होती है, उसको मांगना नहीं कहा जाता। तो हम अपनी हिम्मत को बढ़ाते चले और हमारी हिम्मत निरंतर बढ़ती चले, उसके लिए हमारे पास कुछ संकल्प होने चाहिए। जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं कि अच्छे से अच्छे मनुष्य भी हिम्मत हार जाते हैं। अब नहीं कुछ होता, परिस्थितियों से समझौता कर लो। जैसे आपने सुना होगा ना इतिहास में, महाराणा प्रताप का और अकबर का जब युद्ध चलता था तो अकबर, महाराणा प्रताप जंगलों में रहते रहते इतना परेशान हो गया कि उसका मनोबल गिर गया और उसने सोचा अकबर से संधि कर ली जाए। तो वीर से वीर पुरुष का भी मनोबल गिर जाता है जब परिस्थितियां हटती न हो, जब एक के बाद दूसरी परिस्थिति, जब स्नेह की कमी हो, जब संबंधों में आपस में स्नेह और सहयोग हो ही न, कदम कदम पर रूखापन महसूस होता हो, तब निराशा आती है। मनुष्य हार मान लेता है, परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। ऐसे में हम क्या याद रखें जो परिस्थितियां निराश न करें? याद है आपको क्या हुआ था महाराणा प्रताप के साथ उसके बाद? इतिहास है बहुत अच्छा। तो महाराणा प्रताप का दूत जब ये संधि संदेश लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर बहुत खुश हो गया। तो अकबर के दरबार में ही एक दरबारी थे, जोधपुर राजा के चाचा पृथ्वीराज। उसने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने अकबर को कहा कि बादशाह मुझे ये पत्र जाली लगता है, बनावटी लगता है ये पत्र, इसलिए मैं फिर से पूछता हूं पत्र लिखकर महाराणा प्रताप से कि क्या आप सचमुच संधि चाहते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है, उसका दरबारी था, पूछ लो। तो महाराणा प्रताप को पृथ्वीराज ने मारवाड़ी में राजस्थानी भाषा में एक पत्र लिख दिया जो वहां कोई जानता नहीं था, और वो ये लिख दिया कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उग सकता है और नदियां हिमालय से नीचे उतरने की बजाय वापिस हिमालय पे जा सकती हैं, और एक बात और लिखी कुछ, लेकिन ये संभव नहीं है कि महाराणा प्रताप अकबर को अपना बादशाह कहे। तुमसे ये एक हमारी आस थी और लगता है ये आशा का सूर्य भी अस्त हो रहा है। और उसने लिख दिया कि अपना जो पत्र है वापिस ले लो। और फिर से उसने हिम्मत आ गई तो एक व्यक्ति ने कुछ शब्द सुनाकर हिम्मत दिला दी। उसने बता दिया कि मन से अनेक राजा तुम्हारे साथ हैं, तो बाबा भी हमारी हिम्मत बढ़ाता है। क्या क्या कहकर बाबा ने बहुत हिम्मत दी है बच्चों को, क्या क्या कहा है, हिम्मत बढ़ाई है। तुम विजयी रतन हो, तुम्हारी जीत पहले से ही निश्चित है, तुमने कल्प कल्प जीत पाई है। जरा आंख खोल कर देखो, तुम्हारी विजय का झंडा लहराया हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, कितनी बड़ी बात कही, कही ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जिसके साथ भगवान हो उसको कभी निराशा होगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात बाबा ने हम सब के लिए कही, याद दिलाया हमें कि याद करो भक्ति में तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन करने से ही क्या क्या हो जाता है, भक्तों के बिगड़े काम सुधर जाते हैं, भक्तों में बल आ जाता है, अनेक असंभव चीजें संभव दिखने लगती हैं, आशाएं बंध जाती हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। तुम वही तो हो जिनके दर्शन से, जिनकी याद से भक्तों को ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्हें भला निराश होने की कहां जरूरत है। तुम्हारे तो चेहरे भी दूसरों को हिम्मत दिलाने वाले हैं। तो बाबा ने ये सब याद दिलाकर हमारी हिम्मत बढ़ाई। इस संगम युग के पुरुषार्थ में जो भी बाबा के नए बच्चे आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, उन सब के लिए एक बात हम आप सभी के ध्यान पर देते हैं। है बात सूक्ष्म, नई कुछ नहीं है, आप रोज सुनते आए हैं। अगर पीछे आने के बाद भी आगे जाना चाहते हैं, ये बहुतों का प्रश्न है। अभी आए हैं, एक साल हुआ है, दो साल हुए हैं, यहां आकर देखा है लोग तो बहुत आगे चले गए, आत्माएं तो उड़ रही हैं, हम क्या करें। या कुछ ऐसे भी आए हैं जो कभी ज्ञान में चलते थे, फिर मिस हो गया, अब फिर आए हैं, वो कहते हैं कि कैसे फिर से खोया हुआ राज प्राप्त करें। तो मिल सकता है खोया हुआ राज, उसका तरीका है पहले अपने नशे को बढ़ाएं, पहला कदम नशे में रहना सीखें, लेकिन दिनों दिन अपने नशे को सूक्ष्म करते चलें। और नशे का सूक्ष्म स्वरूप होगा स्वमान, स्वयं की वैल्यू को समझते चलें, स्वयं को खुद महत्व दें, उस महत्व को आत्मा स्वीकार कर रही हो, फिर और सूक्ष्मता में चलें और अधिक सूक्ष्मता होगी। हमारी जो ऊंची स्मृतियां हैं उसमें स्थित होते जाएं। ऊंची स्मृतियां यही हैं जो एक हमने आपको सुनाई कि हम वही हैं जिनके दर्शनों से भक्तों को ये अनुभव हो रहे हैं, हम वही हैं जिनकी माला स्मरण की जा रही है, हम वही हैं जिनकी कहानियों से शास्त्र भरे पड़े हैं, हम पूर्वज हैं महान। जो हमारी ऊंचाई है, जो बहुत बड़ी महानता है, बाबा जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करते चलें। इसमें समय लगता है, परंतु इसको आप लक्ष्य बनाएं अपना, पहले नशा, वही नशा स्वमान में बदल जाए और वही स्वमान श्रेष्ठ स्मृतियों में, ऊंची स्मृतियों में। आप इसको गहराई से समझें, इस बात में बहुत गहराई है और आत्मा को कभी कभी समय लगता है, लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए तो सब कुछ होने में देर नहीं लगती। जैसे बाबा की बात हम सुनते हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में सब कुछ, वो वही सेकंड है, वो हरेक सेकंड नहीं जो बीत रहा है, वो सेकंड जिसमें आत्मा को उसकी श्रेष्ठ स्मृति आ जाए, मैं कौन सी आत्मा हूं, कितनी मेरी शक्तियां हैं, कितना बल मुझे प्राप्त हुआ है, कौन मेरे साथ है। तो ऐसी ऊंची स्मृति को गहराई से समझते हुए स्वीकार करते चलें। हम सब रोज सुनते हैं और सुनाते हैं कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, परंतु ये बात हमारी भावनाओं में, हमारी स्मृतियों में कितनी छप गई है, इस पर जरा गौर करें। जब भगवान साथ है तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? जैसे उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा कोई इस बात से खुश नहीं होते कि कोई मुझसे कहता रहे मेरा बहुत प्यार है, ऐसे तो सभी कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, लेकिन समानता हो। बाबा कभी कहा करते थे कि तुम्हारा प्यार है वो रहता है ऊपर, तो तुम नीचे क्यों रहते हो? जिसका जिससे प्यार होता है वहां तो सदा इच्छा होती है कि साथ रहें, पल भर की जुदाई भी ना हो। तुम कहते हो बहुत प्यार है, वो ऊपर और तुम सदा नीचे, तो एक ऐसा प्यार। तो हमारे साथ सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं हो सकता हमें जीवन में? न निराशा, न उदासी, न डर, न डर हो सकता, न चिंताएं हो सकती। ये दो चीजें मनुष्य को बहुत परेशान कर रही हैं इस समय और करेंगी, जैसे जैसे विनाश का समय समीप आएगा, ये दो बातें बहुत परेशान करेंगी। संसार में भय इस तरह छा जाएगा कि योगियों के सिवाय कोई भी उससे मुक्त नहीं रह पाएगा, और चिंताएं दिनों दिन जलाती जाएंगी मनुष्य को। लेकिन अगर अभी से हम सभी इस स्मृति को दृढ़ करते जाएंगे कि हमारे साथ है कौन, सोचो आप, जिसका साथ होने पर कवियों ने कविताएं बनाई हैं, अगर भगवान का साथ हो तो सारा संसार मिलकर भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, हिला भी नहीं सकता। जिसका साथ होने के बाद और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती, जिसका साथ होने के बाद संसार की कोई भी बुरी शक्ति, विल पावर, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसका साथ होने पर सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, विजय निश्चित हो जाती है, वो सर्वशक्तिवान साथ है। तो क्या हम इतने ही निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह का जीवन जी रहे हैं? उसने कह दिया है मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या हमें इस बात में विश्वास है कि सचमुच वो हमारे साथ है, या साथ देने वाला कह रहा है कि मैं साथ हूं और लेने वाले स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मोटा रूप चाहिए, सूक्ष्म रूप समझ में नहीं आ रहा है। तो इस साथ की स्मृति से साथ का अनुभव होगा, वो साथ है, ये नशा अनेक तरह की मदद का अनुभव कराएगी और मदद हमारे विश्वास को आगे बढ़ाएगी। मदद का अनुभव होगा तो उसमें विश्वास बढ़ेगा, किसी को मदद हो ही न रही हो विश्वास नहीं बढ़ सकता, कितना भी कहा जाए विश्वास रखो, परंतु ये संभव नहीं है जब तक मदद का अनुभव न हो रहा हो। तो इस तरह हम अपनी स्मृतियों को सूक्ष्म से सूक्ष्म करें, तो चाहे आप कल ही क्यों न ज्ञान में आए हो, बहुत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। एक बात हिम्मत। इस यात्रा पर माया की हार या विघ्न या संसार का विरोध या अपने ही मन की कमजोरियां आत्मा को हिम्मतहीन न कर दें। इस बात को आप अंडरलाइन करें अपने जीवन में। जिस जिसने हिम्मत रखी वो आगे बढ़ गए, जिसने हिम्मत खो दी वो नष्ट हो गए, हार हो गई उनकी, और निराश होकर पश्चाताप करके सब कुछ खोकर फिर आए। इसलिए ऐसी घड़ियों को कभी जीवन में न देखना पड़े, इसके लिए हिम्मत को अंडरलाइन करके जाएंगे। दूसरी बात, माया के युद्ध में और एक सबसे बड़ा युद्ध अब संसार में हो रहा है जिसमें हर मनुष्य लगा हुआ है, कौन सा युद्ध है? वो है परिस्थितियों से युद्ध, जिसमें हर व्यक्ति लिप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों से लड़कर विजय प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। और पावरफुल कैसे बनाएंगे? एक ही बात अगर हम अपने पास रख ले, ये कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, कंबाइंड है हम उससे, हमसे शक्तियां हो गई, हम समर्थ हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस तरह के संकल्पों से हमें शक्तियां आएंगी। और हमेशा मनुष्य को अपने जीवन की यात्रा पर चलते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी अपने को उलझा न दें। हम जल्दी उलझ जाते हैं समस्याओं में, बात छोटी होगी और हम उसको बड़ा करके उलझ जाते हैं स्वयं, और जब उलझ जाएंगे तो हमारी सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो पहले ज्ञान के द्वारा हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम समस्याओं में उलझें कैसे नहीं, क्या करें, क्या दृष्टिकोण अपनाएं समस्याओं के लिए, किस तरह का चिंतन करें उस समय, अपनी वाचा को कैसे रखें, धैर्यता को कैसे कायम रखें, उतावलापन न लाएं, उल्टा न सोचते रहें, उत्तेजित न हो जाएं। ये बातें हैं जो समस्याओं को उलझाती हैं, बढ़ाती हैं और जीवन उलझ जाता है। इनके द्वारा समस्याओं को पहले हल्का करना चाहिए। कुछ परिस्थिति जीवन में ऐसी भी हैं हर एक मनुष्य के जिनसे लड़ा नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार कर लेना होता है। आप घर में अकेले हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई, सब जगह आपने दिखाया और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं होगा, तुम्हारी आयु 2 साल है बस। कोई इनसे लड़ते लड़ते परेशान हो जाए, निराश हो, हिम्मत हार जाए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, चलो 2 साल तो है ना आयु, अभी 2 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, इसको स्वीकार करके जो परिस्थिति है उसमें जो कुछ अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, चैन का जीवन जिया जा सकता है, उलझन का नहीं, ये नहीं अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा चिंतन और चिंता मनुष्य के जीवन में समाई हुई है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की पालना हम सब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया मनुष्य को। कर रहे हैं कोई पालना? अगर हम ना हो तो बच्चों की पालना नहीं होगी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें बचपन में छोड़ के चले गए, ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने कुछ नहीं देखा और वो महान बन गए। तो अब इस अंतिम समय में स्वयं को इस बोझ से मुक्त करते चलें। ये एक आर्ट है, तरीका है कि जब भगवान मिल गया तो फिर ये छोटे छोटे बोझ अपने सिर पर चिंताओं के रूप में सदाई ढोने की आवश्यकता नहीं। कितने ऐसे लोग हुए संसार में जिनको पता भी नहीं उनके माँ बाप कौन थे और वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, इतिहास बदल दिया उन्होंने, संसार बदला, नई विचारधाराएं चला दी संसार में। हम ही जिम्मेदार हैं हमारे बच्चों के, ये धारणा ही गलत है। हम जानते हैं, ज्ञान के द्वारा भी जानते हैं और भक्ति में भी लोग मानते हैं कि हर एक आत्मा अपना अपना भाग लेकर आई है, ठीक है। हम किसी को खिला रहे ही नहीं हैं, ये मान्यता ही गलत है। लेकिन मनुष्य इसमें लिप्त हो चुका है बहुत बुरी तरह से, और वो इसी चिंता में है कि मैं न करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, और अपने को उलझाया हुआ है। और संगम योग अगर इस उलझन में बीतता रहा तो कैसा रहेगा, लगेगा कुछ हाथ? हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस आगे का और पीछे का सब कुछ समाये हुए हैं। बहुत सूक्ष्म बात है ये, एक एक संकल्प में सब कुछ समाया हुआ है, भविष्य का भी और पीछे का भी। इसलिए एक एक संकल्प को महत्व देना है। अगर हमारे संकल्प कमजोर हैं तो समस्याएं प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं। हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए, किसी के मार्ग में समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, किसी के मार्ग में बिल्कुल नहीं। एक ही संसार में सब रह रहे हैं, जहां उसके और भी कई कारण हैं, परंतु एक सबसे मुख्य कारण है कमजोर मन, ज्यादा सोचने की आदत समस्याओं का आह्वान करती है। क्रोध, वाचा का गलत प्रयोग, अहंकार, अनावश्यक इच्छाएं, ये समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो हम अब समस्याओं के बीज न बोएं। एक तो पहले ही समस्याएं हैं हमारे पिछले कर्म बंधन के कारण, दूसरे हम कुछ नई समस्या न पैदा करें। अब जानते हैं संसार में रोज का अनुभव है सभी मनुष्यों का कि हम छोटी सी बात को गलत वाचा के द्वारा बहुत लंबा बना सकते हैं, और बहुत बड़ी बात को अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वहीं समाप्त कर सकते हैं। अगर हमने बोलना ही नहीं सीखा भगवान के बोल सुनने के बाद, अगर हमारे बोल में शक्तियां नहीं आई भगवान के अमृत वचन सुनने के बाद, अगर हमारे बोल में जहर भरा रहा तो हम समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। समस्याओं को हम पैदा कर रहे हैं, हम आह्वान कर रहे हैं उनका, कुछ मैंपन से, कुछ अहंकार से, कुछ बहुत ज्यादा सोचकर। इसलिए संगम युग का आनंद जिन्हें चाहिए वो अपने सोच को हल्का करें। बहुत ज्यादा सोचने की आदत, हर छोटी बात के पीछे सोचते रहना, सोचते ही रहना। एक व्यक्ति ने दो शब्द बोल दिए, वो व्यक्ति दो शब्द बोल के चला गया, उसे पता भी नहीं कि उसने कुछ किया है, और आप सोच रहे हैं शायद रात, उसे पता ही नहीं कि उसने कुछ गलती कर दी, और सोचने वाला नींद फिटाए बैठा है, परेशान हो रहा है। उसने इसलिए कहा होगा, वो मुझे ऐसा समझता होगा, उसके मन में ये कुछ होगा, मैं ये करूं, और व्यर्थ के चिंतन में। और जब कल उससे मिलेंगे तो पता चलेगा कि बात तो कुछ भी नहीं थी, उसने तो ऐसे ही कह दिया था हंसी में। तो ज्यादा सोचने की आदत बातों को बढ़ा देती है, राई को पहाड़ बना देती है, और हम खुद ही अपने मार्ग में एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, फिर उसको तोड़ते रहते हैं, और इससे हमारी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए संगम युग पर इन परिस्थितियों के लिए शक्तिशाली स्वरूप अपनाना, इनसे घबराना नहीं है, और इनको सरल चित्त होकर समाप्त करने का अभ्यास होना चाहिए। अपनी परिस्थितियों को हमें स्वयं हल करना सीखना है। हम अगर स्वयं हल करेंगे तो हमारे अंदर शक्तियां आएंगी, और हम दूसरों की मदद मांगते रहेंगे तो एक समस्या जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। इसलिए बाबा ने ज्ञान का भंडार दिया है। ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना योग, भले ही हम सब योग को ज्यादा महत्व देते ही हैं और है ही, लेकिन आप अगर ऐसा करें कि ज्ञान के 10 शक्तिशाली संकल्प लिखें, वो संकल्प जो हमारी स्थिति को अडोल रखते हों, तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे संकल्प जो हमें निसंकल्प बना देते हों, ऐसा संकल्प जो हमारी चिंताएं हर लेता हो, ऐसा संकल्प जो हमारा बोझ उतार देता हो, ऐसा संकल्प जो हमारे गम मिटा देता हो। 10 संकल्प लिखें आप और जीवन में रोज उनका अभ्यास करें। समस्या आ गई तो याद करें कि हमारे साथ कौन है, बस वो सब समस्याएं हर लेगा, हल्के हो जाएं, समर्पित कर दें उस पर। कोई दुख आ गया जीवन में, बहुत बड़ा गम आ गया, याद करें ड्रामा परिवर्तनशील है, आज गम है कल ये समाप्त हो जाएगा, खुशी आ जाएगी। सदा ही कुछ एक जैसा नहीं चलता है, सब परिवर्तनशील है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, कड़वे शब्द बोल दिए, तो हम याद रखें हम महान हैं, हमें वो नहीं बोलना है जो वो बोल रहा है, हमें वो नहीं सोचना है जो वो सोच रहा है। अगर हम भी वही सोचें, हम भी वही बोलें, तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा? हम महान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भगवान के हैं, हम पर संसार की नजर है। हम वो नहीं बोल सकते जो संसार बोल रहा है, हम वो नहीं सोच सकते जो संसार सोच रहा है। इस तरह के संकल्प अगर हम अपने पास रखें तो ज्ञान का बल हमें अडोल बनाने में बहुत बड़ा काम करेगा। केवल योग की शक्ति नहीं, ज्ञान का बल अडोल बनाएगा और तब हमारा योग स्थिर होगा। इस तरह ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अपने इस जीवन में डबल लाइट होने का अभ्यास करें। ये शब्द मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुरली में बार बार आता है, इसका अर्थ सभी को स्पष्ट होना ही चाहिए। डबल लाइट का अर्थ है, दो अर्थ हैं डबल लाइट के, एक आत्मा लाइट और परमात्मा भी लाइट, एक आत्मा लाइट, दूसरा मन भी हल्का, मन भी लाइट, बोझ से मुक्त, आत्मा का स्वरूप भी लाइट प्रकाश और मन पर भी कोई बोझ नहीं, हल्का, जैसे खेल खेल रहे हैं जीवन में, खेल खेल रहे हैं, जीवन एक खेल है, ऐसा हल्का मन कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान साथ है, हम उसकी गुड़ियाएं हैं, उसके हाथ में रस्सी है और वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा डबल लाइट का अर्थ, एक आत्मा लाइट और दूसरा मन लाइट तो हो गया, परमात्मा का मतलब नहीं है इसमें। डबल लाइट का अर्थ है एक आत्मा लाइट और आत्मा ने पहना हुआ है लाइट का शरीर, लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर। तो प्रकाश के शरीर में मैं प्रकाशमान आत्मा हूं, यह है योग की डबल लाइट स्थिति, वो है जीवन की, प्रैक्टिकल जीवन की, और यह है योग अभ्यास की डबल लाइट स्थिति। तो ये प्रश्न रहता आया है सदा से ही, फरिश्ता क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, बाबा ने फरिश्ते की परिभाषा दी है, याद है अभी अभी, फरिश्ता अर्थात चार चीजों से कोई रिश्ता नहीं। हम तो आज तक यही कहते आए थे ना कि किसी से कोई रिश्ता नहीं, समझते थे रिश्तेदार हैं ये अपने नहीं, लेकिन बाबा ने और बातें बता दी जो सूक्ष्म है, अपने संस्कार, संसार के आकर्षण हैं, जो कुछ भी हमें खींचता है, चाहे वो चार हो या 10 हो किसी के पास, जो भी हमारा खिंचाव है उससे हम मुक्त हो जाएं, लगाव से मुक्त हो जाएं, ये फरिश्ता। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है, इसका अभ्यास कैसे किया जाए, इसकी स्मृति कैसे रखी जाए, ये एक बहुत ही सुंदर विधि है आगे बढ़ने की, बड़े अच्छे अनुभव करने की। तो बड़ी सरल रूप से हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारा ये शरीर है ये तो बना है प्रकृति के तत्वों से, ऐसे ही हम जो कुछ निरंतर सोच रहे हैं, हमारे संकल्प वाइब्रेशंस बनके, तरंगों के रूप में, किरणों के रूप में इस सारे शरीर में फैलते जा रहे हैं। और एक ऐसा ही शरीर जैसा ये है, इसके अंदर निर्माण है ही सदा ही। जब से हमने सोचना शुरू किया हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया और वो शरीर उसके वाइब्रेशंस बाहर भी फैलते रहते हैं, चारों ओर दूर दूर तक भी। तो अब आप ये सोचें कि मैं आत्मा हूं और मेरे चारों ओर प्रकाश का शरीर है, ठीक ऐसा ही जैसा ये शरीर है। ये है सूक्ष्म शरीर और इस अनुभव में रहना फरिश्ता स्वरूप। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? कुछ कठिन जटिलता नहीं है इसमें, बिल्कुल सहज बात कि हमारे अपने ही मन के द्वारा निर्मित शरीर है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, तो हमें रोज अभ्यास करना चाहिए 1, 2, 4, 5 बार कि मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित इस शरीर और ऊपर जा रही हूं बाबा से मिलने, सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलकर दृष्टि लेकर मैं नीचे आ रही हूं सूक्ष्म शरीर सहित, फिर इसमें प्रवेश कर रही हूं अपने सूक्ष्म शरीर को। इस शरीर से निकलता हुआ और इसमें प्रवेश करता हुआ देखें, अनुभव करें, यह होगा बड़ा सरल स्वरूप फरिश्ते रूप का। कुछ भी कठिनाई नहीं है, अगर आप 15 दिन इसका अभ्यास कर लें थोड़ा थोड़ा ही 5 बार रोज, तो आपको ये सहज फीलिंग होने लगेगी कि मैं और मेरा सूक्ष्म शरीर इससे बिल्कुल अलग हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर को मनोवैज्ञानिकों ने लाइफ एनर्जी कह दिया है, जीवन शक्ति। अगर ये ना हो तो शरीर की शक्तियां, शरीर चेतन अनुभव नहीं होगा। इसलिए बहुत लोगों को ये अनुभव रहा और शास्त्रों में ये मान्यता हो गई कि आत्मा सारे शरीर में फैली हुई है, व्याप्त है, एक जगह नहीं। आपने सुना होगा बहुत लोग बहस करते हैं, हम कहेंगे यहां है, वो कहेंगे नहीं सारे शरीर में है। बाबा ने भी देखा था, बाबा के काका ने, आपको याद हो बाबा की कहानी में लिखा हुआ है कि वो शरीर छोड़ रहे हैं और पैरों की ओर से आत्मा सिमटती जा रही है। तो पैरों में कोई आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा, क्योंकि संकल्प सब शांत हो जाते हैं, तो सारा सूक्ष्म शरीर सिमटता हुआ नजर आने लगता है और आत्मा उस सहित बाहर निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर में हमारे इस जन्म का और पूर्व जन्मों का सब कुछ समाया होता है, उसके आधार पर ही हमारे दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। उस शरीर में, दूसरे शरीर में हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सब कुछ डल जाता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म गति काम कर रही है, जिसको न कोई वैज्ञानिक जान सका, न मनोवैज्ञानिक, कोई नहीं, न कोई डॉक्टर न जान सकता, क्योंकि ये चीज बहुत गहरे अनुभव की है। इस तरह हम सभी को डबल लाइट रहने का अभ्यास करना है। एक तो अपने मन को हल्का रखें। आप कहेंगे कि भला कहने से मन हल्का हो जाएगा क्या? जैसे डॉक्टर कह देते हैं भाई ज्यादा ना सोचा करो, लेकिन ये तो बताते ही नहीं ज्यादा कैसे ना सोचें। कह देते हैं ज्यादा चिंता करोगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पर करें क्या? घर में जो चिंता लगी हुई है रात दिन, समस्याएं, कैसे न सोचें? लेकिन बाबा इन सब का उत्तर देते हैं कि अपने को हल्का रखो, दो तरीके हैं। अपने सारे बोझ मुझे दे दो। जैसे आप जो अपने घर में लौकिक माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं ना, तुम सोचो नहीं, तुम बोझ न रखो, तुम पढ़ो, अब खेलो, तुम्हारी आयु पढ़ने लिखने खेलने की है, सारा बोझ हम संभालेंगे, हमें दो, तुम चिंता ना करो, कोई चिंता है हमें बताओ। तो हमारा बाप भी यही कहता है, अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दो, मुझे सुनाओ, मेरे ऊपर छोड़ो। दूसरी विधि है कि जितना जितना हम इस फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे, अपने लाइट स्वरूप में रहेंगे, आत्मा के लाइट स्वरूप में, उतना उतना मन हल्का रहेगा, चिंताओं से मुक्त रहेगा। हमें स्वयं महसूस होगा कि जिसकी हम चिंता कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, हमारी शक्तियों की भेंट में वो बात कुछ भी नहीं है, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हमारी चिंता तो भगवान करता है, हमारी सुरक्षा तो भगवान करता है, ये हमें फीलिंग होने लगेगी। इस तरह डबल लाइट इस जीवन में रहेंगे तो उड़ते रहेंगे, इस जीवन का आनंद प्राप्त होगा। योग के संबंध में दो बातें आपको याद रखनी हैं। योग के दो पहलू हैं। पहला पहलू, हम कई बार बता चुके हैं पहले भी इसी ग्रुप में भी, कि हमें अपने इस जीवन में ये महसूसता बढ़ानी है कि बाबा मेरा है। ये भी बात मुख से कहने की नहीं है केवल कि मेरा बाबा हम कह दें और काम बन गया, लेकिन प्रैक्टिकल फीलिंग में आ जाए, ये बात संबंध में आ जाए, समीपता में आ जाए, भावनाओं में समा जाए, भगवान मेरा है नशे में समा जाए, हमारा विवेक इस बात को स्वीकार कर ले, स्वीकार भी कर ले और हमारे नशे में भी आ जाए। एक तो योग का स्वरूप है ये, जिसमें कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, उलझन बहुत है, काम बहुत है, कैसे करें, बच्चे घर में आवाज करते हैं, टेलीविजन जोर से चलता है, हम योग नहीं कर सकते, इसमें ये सब प्रश्न नहीं है। भगवान मेरा है ये नशा जीवन में समाने लगे, इस पर आप सुख समता से चिंतन करो। वो हमारे पास हमारा बनकर आया है, हमें वो अपना नजर आए। और दूसरा पहलू है जिसको हम अभ्यास कहते हैं, जिसमें हमें स्वयं को आत्मा समझकर बाबा से अपनी बुद्धि को जोड़ना होता है। उसमें आप इन प्रश्नों में न उलझें कि सुख संवतन में बाबा को याद करें या परमधाम में, परमधाम में याद करने से भी कर्म विनाश होंगे या सुख संवतन में याद करने से, इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है, ये प्रश्न यथार्थ भी नहीं है। याद हो बुद्धि का लिंक उससे बना हुआ हो और हम जान सकते हैं बहुत सहज रूप से, जब हम किसी मनुष्य को भी याद करते हैं तो एक सेकंड के बाद हमें ये आभास नहीं रहता कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, या रहता है, फिर तो केवल याद होती है, स्थान का महत्व नहीं होता है। हम बाबा को याद करते हैं, आप उसे परम धाम में याद करें, ये आवश्यक नहीं कि आप भी अपने को परम धाम में महसूस करें। हाँ, ये भी एक विधि है कि हम भी परम धाम में चलें और ज्ञान सूर्य की किरणें ग्रहण करें, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तब ये स्थिति रखना बहुत कठिन लगेगा। इसलिए आप ये स्थिति लाएं कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं और परम धाम से ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा, प्राप्ति में भी कोई अंतर नहीं होगा। इस योग के लिए दो बातें याद रखें, एक चिंतन, एक दर्शन। अपने स्वरूप का, बाबा के स्वरूप का, अपने फरिश्ते स्वरूप का, अपने भविष्य के स्वरूप का, अपनी तीसरी नेत्र से, बुद्धि से दर्शन करते रहें। बिना बुद्धि के स्वरूप पर लगाए अनुभव नहीं होंगे। तो मन से होगा चिंतन, बुद्धि से होगा दर्शन, दोनों हमारी शक्तियां योग में लगी रहेंगी। और ये एक बड़ी सूक्ष्म विधि सिद्धांत है कि जहां हमारी बुद्धि लग जाती है वहां से सब कुछ हमारे पास आने लगता है। अपने कल्पना रूप से ही आप यहां बैठे हैं, ओम शांति भवन के ऊपर आसमान में चांद चमक रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, आप जरा बुद्धि से उसे देखें कि आसमान में चांद चमक रहा है, उसको देखते ही रहें तो चांद से आप जुड़ गए और उसकी शीतल लहरें आपके पास आने लगी। ये एक सिद्धांत है, जिस चीज को हमारी आंखें देखती हैं, जिस चीज को हमारी तीसरी आंख देखती है उससे हम जुड़ जाते हैं और उसके पास जो कुछ है वो हमारे पास आने लगता है, या हमारे पास जो कुछ है वो उसके पास जाने लगता है। ऐसे ही जब हम बाबा के स्वरूप को अपनी बुद्धि से देखते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं और उसकी शक्तियां, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद, पवित्रता हमारे पास आने लगती है और हमारी बढ़ने लगती है। ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है। तो हम उससे अपनी बुद्धि को लगाएं। अगर परम धाम में बुद्धि जाना कठिन हो तो एक और सरल तरीका है, हम बाबा का आह्वान कर लें, बाबा को नीचे बुला लें और देखें कि बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में स्थित है और हमारे ऊपर किरणें डाल रहा है। वहां से भी आपको वही अनुभव होगा जो परम धाम से होता है। ये सरल तरीके आप अपनाएं और योग को जीवन में जोड़ें, बैठने में नहीं केवल, जीवन में, कर्म में। अपने जीवन में खुद ऐसा समय निकालें, अपनी दिनचर्या को खुद ही ऐसा सेट करें कि आपको कुछ समय मिल जाए। ये जरूर नहीं कि एक साथ एक घंटा मिले, आपको पांच पांच दस दस मिनट भी मिलते हो, उसमें कभी बैठकर या चलते फिरते किसी भी तरह जब बुद्धि को आप फ्री कर सकें करके योग अभ्यास अवश्य करें। तो इस तरह जीवन में जल्दी से जल्दी सर्व प्राप्तियों के लिए डबल लाइट होना, हिम्मतवान बनना, अपने को शक्तिशाली बनाना और अभ्यास को बहुत ज्यादा करना, ये आवश्यक है। ओम चंद।